अनगार धर्मामृत लेक्चर नंबर 14
नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ श्रुतात्मने नमः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूनं प्रणम्य वीरं परमावबोधम् आशादरो मूदविबोधनाय सो धर्मामृतधर्मशास्त्र पदानि किञ्चित् प्रगटीकरोति
पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह अनगार धर्मामृत नामक ग्रंथ है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 49 पर 49 कवच के देखते ही हम 49 पृष्ठ पर आए हैं चौथी लाइन से पढ़ पाप के उपकार और पुण्य के उपकार को दृष्टांत के द्वारा दृढ़ करने के लिए दो पद्य कहते हैं। पहले तो हमने देखा था पुण्य तो सुख की प्राप्ति कराता है और दुख में से मुक्ति देता है, ये दो बातें बताई। अब यहाँ कहते हैं पाप का जो अपकार है और पुण्य का उपकार है उसको दृष्टांत देके यहाँ समझाएंगे। ये उपकार से उल्टा अपकार यानी बुरा करना किसी का, उसको अपकार करना कहते हैं। ये उपकार और अपकार यहाँ लौकिक की बात है। जैसे उपकार करता है, जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य गति स्थिति में उपकार करता है, उसका अर्थ है वहाँ निमित्त होता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और कहाँ किस अर्थ में उसको लेना है ये हमें सोचना है। नहीं तो पहले ही निमित्त से कार्य होता है ऐसी बुद्धि पड़ी है अनादि से जीव की। और देखो यहाँ लिखा है ना शास्त्र में कि उसका ये धर्म और अधर्म का उपकार है, तो उपकार करता है कि नहीं जीव पर, ऐसा प्रश्न होता है। तो आगे लिखा है पुद्गल का भी उपकार है जीवन में और मरण में भी। तो मरण अगर उपकार होगा जीव के ऊपर उसका अर्थ क्या है, ये तो निमित्त होता है, बस इतनी बात है। यहाँ तो जो हम लौकिक में उपकार अपकार कहते उसकी बात है तो यहाँ पर भी निमित्त है, वो कुछ लाके देता नहीं है। यहाँ हम ऊपर 57 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। आवाज बराबर नहीं आ रही अभी आ रही है क्या? गाथा पढ़ेंगे। तत्ताद्रुकमठोपसर्गलहरी सर्ग प्रगल्भोष्मण किं पार्श्वे तमुदग्रमुग्रमुदयम् निर्वच्मि दुष्कर्मण किं वा तादृश दुर्दशा विलसित प्रध्वंसदि प्रोजसो धर्मस्योरुविसारि सख्यमिह वा सीमान साधीयसाम। नीचे उसका अर्थ देखते हैं। हम 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ पर कमठ के द्वारा किए गए उन प्रसिद्ध भयानक उपसर्गों की परंपरा को क्या कहते हैं। हमें तो 23वें जो पार्श्वनाथ तीर्थंकर है जब मुनि अवस्था में थे ध्यान में थे तो उनका जो पूर्वाश्रम का भाई कमठ 10 भवन तक वो तो वैर उसके मन में जागृत रहा, एक तरफा था फिर भी यहाँ आकर उन्होंने उपसर्ग किया। तो कहते प्रसिद्ध भयानक उपसर्ग, क्योंकि ये तो कथा प्रसिद्ध है और सब जीव इसको जानते हैं। ओले शोले पत्थर बने वो बरसाए ना उन्होंने, देवकृत उपसर्ग इसको कहते हैं। तो भयानक उपसर्गों की परंपरा को जन्म देने में समर्थ, ये उसमें निमित्त तो कर्मठ था। और ये जो उपसर्गों को कौन दे रहा था, समर्थ कौन था? एक उन प्रसिद्ध भयानक उपसर्गों की परंपरा को जन्म देने में समर्थ कौन? दुस्सह यानी सहने में कठिन शक्तिशाली दुष्कर्म के पाप कर्म कहेंगे ना, वो ऐसा था वेन्दी को वापस पर उस आगम प्रसिद्ध तीव्र दुस्सह उदय यानी पाप कर्मों का तीव्र उदय, ये तो आगम से प्रसिद्ध है। यहाँ कहाँ तक कथन करे, मेरे दस भवन तक से तो समय दृष्टि थे, ऐसा तीव्र भयानक पाप तो नहीं किया था। तो उससे पहले जब कभी बांधे हो गए उनका एक साथ उदय आया है तीव्र पाप का। तथा इंद्र के द्वारा नियुक्त धर्णेन्द्र और पद्मावती नामक यक्ष यक्षिणी द्वारा भी दूर न की जा सकने वाली पार्श्व प्रभु की अत्यंत दुखदायक दुर्दशा को रोकने में अधिकाधिक प्रतापशाली उस धर्म के सर्वत्र सर्वदा कार्यकारी महती मैत्री का भी कहां तक गुणगान करे। अब यहाँ पुण्य की बात कर रहे हैं कि धर्णेन्द्र और पद्मावती वो तो यक्ष और यक्षिणी थे, वनवासियों में से थे, तो के उनके द्वारा भी वो दूर नहीं हो सकता था ये जो उनकी दशा। तो कहते भी वो रोकने में प्रतापशाली कौन था? तो कहते धर्म था, क्योंकि वो तो अपने में आत्मा में लीन हो गए और नहीं तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति भी चल रही थी, मोह तो था नहीं इसलिए उनको तो दुख उसमें भी नहीं था। वो किसका बल था? तो धर्म का बल था। वितराग धर्म है, हाँ बिल्कुल उसी को लेना है मुख्यता से, और साथ में पुण्य, परंतु वो तो पुण्य के न पाप में जुड़े हैं न पुण्य में जुड़े हैं। ठीक ही है, इस लोक में अतिशयशालियों की कोई सीमा नहीं है, यानी ये दूसरा पाप को भी बताया, तीव्र पाप के उदय को भी बताया और पुण्य को भी यानी धर्म को भी बताया। अब इसी का विशेषार्थ बताएंगे। जैन शास्त्रों में भगवान पार्श्वनाथ और उनके पूर्व जन्म के भ्राता ने भाई कमठ के वैर की लंबी कथा वर्णित है, क्योंकि दस दस भवन तक चली थी वो अन्य अन्य पर्याय धारण करने पर भी, क्योंकि अनंतानुबंध ऐसा ही चलता है। जब भगवान पार्श्वनाथ प्रव्रज्ञा लेकर, ये प्रव्रज्ञा क्या होती है मालूम? दीक्षा को ही कहते हैं प्रव्रज्ञा। तो दीक्षा लेकर साधु बन गए तो अहिच्छत्र के जंगल में ध्यान मग्न थे। अहिच्छत्र ये प्रदेश का नाम है, ये उसके पास आता है, ये अपने किसी ने बताया था ना हमारे यहाँ ये बात हुई थी, ये अभी याद नहीं आ रहा। उधर से उनका पूर्व जन्मों का वैरी कमठ जो मरकर व्यंतर हुआ था जाता था, भगवान पार्श्वनाथ को देखते ही उसका क्रोध भड़का और उसने भीषण जलवृष्टि उपलवृष्टि उपलेने पत्थर झंझावात के साथ ही अग्नि समुद्र सर्प भूत वैताल आदि के द्वारा इतना त्रस्त किया कि इंद्र का आसन भी डोल उठा। इन्हें कम पाए मानूंगा। इंद्र के आदेश से धर्मेंद्र और पद्मावती संकट दूर करने के लिए आए, किंतु वे भी उन उत्पातों का निवारण नहीं कर सके। किंतु भगवान पार्श्वनाथ रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए, वे बराबर ध्यान मग्न बने रहे। उनकी उस धर्माराधना ने ही उस संकट को दूर किया। उनके तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान की महिमा ऐसी है तो कोई उपसर्ग रहता ही नहीं है, इसलिए कहते ये धर्म का बल था। न पुण्य का प्रभाव देवों ने भी कुछ नहीं कर सके और ये इतना पाप का उदय तो चलता रहा। इसी पर से ग्रंथकार कहते हैं कि पाप कर्म की शक्ति तो प्रबल है ही, किंतु धर्म की शक्ति उससे भी प्रबल है, जो बड़े बड़े उपद्रवों को भी दूर करने की क्षमता रखती है। अंतरंग स्थिरता की बात लेना है यहाँ पर, वितरागता की। आशाधर जी ने अपनी टीका में दो विशिष्ट बातें लिखी है। एक, इंद्र की आज्ञा से धर्मेंद्र पद्मावती आए, और दूसरे, वे व्यंतरकृत उपद्रव को दूर नहीं कर सके। ये दोनों ही बातें हमारे लिए नहीं है। हम तो हमेशा ही कि व्यंतरों ने वो उपसर्ग दूर किया, उनके जो फण मंडप किया, उनकी रक्षा करने के परिणाम किए, और वो स्वयं आए थे और यहाँ इंद्र ने आज्ञा दी थी। ये दो बातें आशाधर जी ने लिखी है। ये दोनों बातें अन्य शास्त्रों में वर्णित नहीं है, किंतु दोनों ही यथार्थ प्रतीत होती है। मध्य लोक में सौधर्म इंद्र का शासन होने से, शासन यानी उसी का आधिपत्य चलता है, उसी का वहां साम्राज्य चलता है, भवनवासी देव भी उसके ही अधीन है। अतः भगवान पर उपसर्ग होने पर इंद्र की आज्ञा से धर्मेंद्र पद्मावती का आना उचित है। दूसरे, इन दोनों ने आकर उपसर्ग से रक्षा तो की। धर्मेंद्र ने अपना विशाल फणा मंडप भगवान पर तान दिया, किंतु उपसर्ग दूर हुआ भगवान की आत्माराधना रूप धर्म के प्रभाव से। दोनों ही बातें स्मरणीय है। उन्होंने उसमें से ये क्यों उन्होंने लिया और क्यों ठीक प्रतीत होता है, ये विशेषार्थ ने स्पष्ट किया। दूसरा उदाहरण 58 नंबर की गाथा श्लोक। प्रद्युम्न षडहोद्भवो सुरभिदः सौभागिनेय प्रधा रत्वा प्राग विगुणो सुरेन शिलया प्रांतो वने रुंद्रया तत्कालीन विपाक पेशलतमे पुण्यै खगेन्द्रात्मजे कृत्यालंब्य ततेन तेन जयिना विद्या विभूत्यादिना। दैत्य का मर्दन करने वाले, मर्दन ने नाश करने वाले, उसको मारने वाले श्री कृष्ण की अति वल्लभा रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न को जब वह केवल 6 दिन का शिशु था, क्रुद्ध ज्वलित धूमशिखी नाम के दैत्य ने हरकर महाखदीर नाम की अटवी में बड़ी भारी शिला के नीचे दबा दिया और ऊपर से भी दबाया। ये कथा मालूम है कि नहीं? वो बालक था तभी उसको हरकर ले गया था प्रद्युम्न। इसका कारण यह था कि पूर्व जन्म में मधु राजा की पर्याय में प्रद्युम्न ने उसकी प्रिय पत्नी का बलपूर्वक हरण किया था। उसका नाम क्या पिंगला था, क्या याद है? पिंगला ऐसा लगता है। किंतु तत्काल ही उदय में आए अत्यंत मधुर पुण्य कर्म के योग से, यानी ये प्रद्युम्न का अपना ही पाप था जो उदय में आया था कि वो 6 दिन का शिशु था तब कोई उसको उठा के ले गया था और उसको डाल दिया था, वो यहाँ लिखा ना जंगल में डाल दिया था बड़ी भारी शिला के नीचे दबा दिया था। फिर भी उसी समय उसके कुछ पुण्य का भी उदय आया तो अत्यंत मधुर पुण्य कर्म के योग से विद्याधरों का स्वामी काल संवर उस वन में आया और उसने शिला के नीचे से शिशु को निकालकर अपना पुत्र बनाया। काल संवर के अन्य पुत्र उसके विरुद्ध थे। प्रद्युम्न ने उन्हें पराजित किया तथा विद्याधरों की विद्याएं और 16 अद्भुत लाभ प्राप्त किए। अभी उसकी लंबी कथा है परंतु उसमें हम नहीं जाएंगे। ये 58 गया नीचे पढ़ते। किन्हीं का कहना है कि विपत्ति को दूर करने के लिए शिष्ट जन मंत्रादि के प्रयोग का भी व्यवहार करते हैं, तब आप उसके प्रतिकार के लिए पुण्य की ही शक्ति का गुणगान क्यों करते हैं? इसका उत्तर देते हैं, क्योंकि हमने बहुत उनसे सुना भी है, उसके ऊपर शास्त्रों में भी लिखा आता है कि विपत्ति को दूर करने के लिए मंत्रादि के प्रयोग, नमोकार मंत्र कहने से अमुक आपत्ति दूर हुई है, अपने ऐसे सुने भी बहुत सारी कथा। तो कहते हैं पुण्य का गुणगान क्यों कहते हो, उस मंत्र का प्रभाव है ऐसा क्यों नहीं कहते, ये बात बता रहे। उसके लिए आगे हम श्लोक पढ़ेंगे 59 नंबर का। यश्चानुश्रूयते हर्तुम आपद पाप पक्त्रिमा उपाय पुण्य सद्बंधुम सोप्योत्थापयितुम परम। पाप कर्म के उदय से आने वाली विपत्तियों को दूर करने के लिए सिद्ध मंत्र आदि का प्रयोग जो आप्त पुरुषों की उपदेश परंपरा से सुना जाता है, वह भी केवल सच्चे बंधु पुण्य को ही जागृत करके अपने कार्य में लगाने के लिए किया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? पाप कर्म के उदय से विपत्तियां आती हैं, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कहते हैं उसके लिए मंत्रों का प्रयोग करने की बातें तो भगवान के यानी उनके उपदेश में आई हुई है, साधुओं के भी आचार्यों के भी अन्य भी लोग उसका उपदेश करते हैं। तो कहते हैं वो क्यों कहते हैं? तो वो मंत्र के द्वारा भी यहाँ लिखा ना सच्चे बंधु पुण्य को जागृत करते हैं, यानी वो मंत्र के द्वारा भी पुण्य का बंध हो रहा है कहो, या अंदर पड़ी हुई पुण्य प्रकृतियों में उसका जो कुछ अनुभाग बढ़ना है कहो तो उसका फल हमें मिलता है। इसलिए कहते हैं कि पुण्य को जागृत करके अपने कार्य में लगाने के लिए, अपना कार्य में पुण्य का अपना कार्य, पुण्य का अपना कार्य क्या है? वो विपत्ति को दूर करना। ने पाप के उदय से विपत्ति आ पड़ी है और मंत्र के प्रयोग से उस जीव का तो उसमें उपयोग लगा, अरिहंतों का गुणगान कर रहा है, तो उसके द्वारा उसके जो पुण्य है उससे वो विपत्ति दूर होती है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। हमने पहले देखा था ना कि सुख को प्राप्त कराता है और विपत्तियों को दूर कर देता है, अर्थात पुण्योदय के बिना मंत्र तंत्र आदि भी अपना कार्य करने में असमर्थ होते हैं। क्या कहा? ये मंत्र तो समझे, तंत्र क्या होता है? तंत्र है ना, टेक्निक, कुछ तांत्रिक जो कहीं है ना, तांत्रिक, हाँ उसको तंत्र कहते हैं। देखो
पाप कर्म का होता है, मंत्र तंत्र कुछ नहीं करता। मंत्र आदि का प्रयोग तो अपने को भी इनसे पूछना है तो आपके पास कोई मंत्र होगा आपको
देखो जैसे हम औषधि कहते मंत्र तंत्र की बात छोड़ो औषधि करते किसी रोग के इलाज के लिए कभी किसी को तो उसका उल्टा एलर्जी आ जाती है कुछ अन्य उसके रिएक्शंस हो जाते हैं कोई उसके काम करती कोई तो उसका असर ही नहीं होता ऐसे अलग अलग हम जो देखने में आते हैं बातें तो उसका अर्थ क्या है ये तो पुण्य का उदय तो दिखाई नहीं दे रहा ये तो हम इन्फ्लुएंस निकालते हैं यहाँ पर ऐसे कहते हैं क्या वो साता असाता को क्या पता है क्या बाहरी औषधि को काम करना कि नहीं ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कभी कभी अब देखते हैं ना कोई भयानक कोई प्रदेश में जाके एक्सीडेंट होता है और वहां मदद करने वाला कोई यहाँ पहुंचता है उसको किसने बुलाया उसको ये परिणाम कैसे हुआ कि इसको मदद करे ये तो सबके मन में तो ऐसे परिणाम नहीं हुए हमारे मुंबई में रोड में कोई गिरा है तो कोई अरे कौन लफड़े में पड़ेगा पुलिस के करके छोड़ के चले जाता है उस जीव का पुण्य का उदय होगा तो वो सहज रूप से उसको मदद भी मिलेगी यहाँ कहते हैं पुण्योदय के बिना मंत्र तंत्र आदि भी अपना कार्य करने में असमर्थ होते हैं बस केवल विपत्ति आई है इसलिए नमोकार मंत्र कहना और ये मेरी विपत्ति दूर करेगी इसलिए वो कहना उसमें भी ऐसा पुण्य कहाँ बंधेगा थोड़ा पुण्य बंधेगा परंतु ऐसा पुण्य कहाँ ये तो नहीं नहीं भगवान आके मेरे कुछ भला कर देगा ये मिथ्या मान्यता तो पड़ी रहेगी वहां पर तो उसका तो फल तो मिथ्या तो रूप का चल यदि वो परंतु वो नमोकार मंत्र कहने से मेरी आपत्ति दूर होगी ऐसे मान्यता लेके ही कितने कहते हैं उसको अन्यथा तो मंत्र याद नहीं आता है विपत्ति में ही याद आता है ना हाँ विपत्ति के काल में भले याद आए परंतु वो अरिहंत और सिद्धों का स्वरूप क्या है और ये सारे अगर हम तत्वों की बात तभी ख्याल में आती है और भक्ति भाव पूर्वक उनका नाम लेते हैं और यदि उसके वो पुण्य का उदय हो तो विपत्ति दूर होती भी है और ऐसे केसेस भी हम सुने भी है देखे भी है ऐसे चलते भी है लोग आपस में बोलते भी है और ये साता असाता के भी उदय पलटते हमने देखा ना अंतर्मूर्त में पलटता रहता है अब किसका कैसा कैसा उदय आएगा पता नहीं चलता परंतु ये तो मिथ्या दृष्टि के पाप पुण्य के उदय में कुछ वो नहीं रखा यहाँ तो धर्म के प्रभाव से ये जो सच्चा धर्मी है उसके जो पुण्य की बात है उसकी बात यहाँ चलती है 51 पृष्ठ पर आए हम आगे कहते हैं पुण्य कर्म उदय के अभिमुख हो उदय के अभिमुख यानी उदय में आने वाला अभिमुख जैसे अभिमुख यानी सन्मुख अथवा विमुख हो यानी अभी दूर है उदय विमुख हो दोनों ही अवस्थाओं में सुख के साधन व्यर्थ है क्या कहना चाहते हैं पुण्य कर्म का उदय अभी आने वाला ही है आने वाला है तो उसका फल मिलेगा ही तुम क्यों उसमें दौड़ा दौड़ कर रहे और पुण्य का उदय भी दूर है अभी आने वाला ही नहीं है तो तुम कितनी भी दौड़ा दौड़ी करे तो उससे क्या मिलने वाला है ख्याल में आई बात जैसे पुत्र पर लगे थे सुपुत्र है तो क्यों कमाते है उसके लिए कमा के रखते हो वो तो अपने कमाएगा और कुपुत्र है तो क्यों कमाते हो कितना भी कमाओगे तो जाने वाला है यह वही बात शायद बताएंगे 60 नंबर को पढ़ेंगे पुण्यम ही सम्मुखीनम चेत सुखोपायशतेन किम न पुण्यम सम्मुखीनम चेत सुखोपायशतेन किम देखो सुख के उपाय शतेन यानी सैकड़ों उपाय करने से भी क्या होगा पुण्यम ही सम्मुखीनम चेत यानी वो पुण्य सम्मुख यानी उदय के आने योग्य है तो सैकड़ों उपायों की क्या जरूरत है और न पुण्यम सम्मुखीनम च पुण्य अगर वो उदय के सम्मुख नहीं है तो सुखोपाय शते न किम सैकड़ों उपाय करके सुख के उससे क्या होने वाला है अभी हम इसका अर्थ नीचे क्या देते हैं देखिए यदि पुण्य कर्म अपना फल देने में तत्पर है तो सुख के सैकड़ों उपायों से क्या प्रयोजन है यानी क्या जरूरत है अभी उसकी क्योंकि पुण्य के उदय में सुख अवश्य प्राप्त होगा तो कैसे होगा बाह्य निमित्त तो चाहिए ना वो जो यथायोग्य होने वाले वो मिलेंगे। और यदि पुण्य उदय में आने वाला नहीं है तो भी सुख के सैकड़ों उपाय व्यर्थ है, क्योंकि पुण्य के बिना उनसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो हमें ये पता ही नहीं है ना, कैसा नहीं होता, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे उसके पीछे लग, जो करने योग्य बात है उसके लिए कभी नहीं सोचता कि मैं करके दिखाऊंगा। आगे पुण्य और पाप में बला बल का विचार करते हैं, उसमें बलशाली कौन है तो बला बल का विचार करते हैं। 61 नंबर शीतोष्णवत् परस्पर विरुद्धयोर्यः हि सुकृत दुष्कृतयोः सुख दुख फलोद्भवयोः दुर्बलमभिभूयते बलिना। पुण्य और पाप शीत और उष्ण की तरह परस्पर में विरोधी है। पुण्य का फल सुख है और पाप का फल दुख है। यह अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है, इंद्रिय सुख की बात है। इन दोनों में जो दुर्बल होता है वह बलवान के द्वारा दबा दिया जाता है। इसका करते किसका कैसा उदय है, पाप का तीव्र उदय है तो वहां पुण्य का उदय जिसको कमजोर पड़ा, पाप का उदय उसके ऊपर हावी होगा बलवान, और पुण्य का जो कहेंगे अधिक अनुभव वाला तीव्र उदय है तो पाप के उदय को दबा देगा। आगे कहते तत्काल किया गया धर्म भी पाप के उदय को मंद करता है। ये बताते मुझे पहले वाला पुण्य जाके उदय में आवे तो कि नहीं, अभी वर्तमान में जो कर रहा है धर्म, धर्म की बात तो वर्तमान में धर्म करते हो यानी वर्तमान में आत्मस्थिरता करते हैं तो पाप कर्म का उदय मंद होकर उदय में आएगा। यही बात यहाँ कहेंगे, अभी हम पढ़ेंगे श्लोक में क्या कहते, मैंने भी नहीं पढ़ा है। धर्मोनुष्ठीय मानोपि शुभ भाव प्रकर्षत भंगत्वा पापरसोत्कर्षम नरमुच्छवास यत्यरम। उसी समय किया गया धर्म भी शुभ परिणामों के उत्कर्ष से पाप कर्म के फल देने की शक्ति की उत्कटता को यानी तीव्रता को घात कर शीघ्र ही मनुष्य को शांति देता है। अभी वर्तमान में पाप कर्म का उदय चल रहा है और उसी समय किया गया धर्म, धर्म यानी अंतरंग में स्थिरता है, तो स्थिरता से तो इस जीव की शांति तो है ही है, तो अंतरंग में स्थिरता है परंतु अभी पूरा वितराग नहीं हुआ है, तो स्थिरता के साथ वहां भी अत्यंत उच्च दर्जे का पुण्य भी बंद हो रहा है। शुद्धोपयोग में भी साथ में वहां पुण्य का बंद है, क्योंकि पूरा बंद तो रुका नहीं है। और मैं करना नियोग का नियम बताना चाहती हूँ, जहां पुण्य का इतना उत्कृष्ट अनुभाग बंद हो रहा है वहां पाप का जो अनुभाग मंद होकर उदय में आता है एक बात, और पहले में वहां पड़े हुए पुण्य कर्मों में भी वो संक्रमित होते उनमें अधिक उत्कर्षण हो जाता है उसका फलदान शक्ति का, यानी वर्तमान के उस परिणाम के कारण सत्ता में पड़े हुए कर्म कौन से पुण्य कर्म उसका अनुभाग अधिक होगा, पाप कर्मों का अनुभाग घटेगा। ये सहज निमित्त है, जहां विशुद्धि ज्यादा है कषायों की मंदता है और यहाँ तो धर्म रूप परिणाम है, वहां जो अशुभ प्रकृतियां हैं उसका अनुभाग मंद होकर उदय में आता है। तो यही बात यहाँ कहते हैं कि उसी समय किया गया धर्म, उसी समय नहीं जिस समय पाप का उदय चल रहा है उसी समय की बात चल रही है, शुभ परिणामों के उत्कर्ष से, क्योंकि साथ साथ शुभ कर्म उत्कर्षण है वो तो बहुत हाई लेवल वाले अधिक ऐसे बन रहे हैं, पाप कर्म के फल देने की शक्ति की उत्कटता को यानी तीव्रता का घात कर देते हैं और शीघ्र ही मनुष्य को शांति देता है। अर्थात पहले का किया गया धर्म ही सुख शांति दाता नहीं होता, यानी केवल वही सुख शांति का दाता नहीं है, किंतु विपत्ति के समय किया गया धर्म भी लगाए ना, इन्हें पहले वाला तो देता ही देता है, परंतु अभी वर्तमान में जो वो अंतर में स्थिरता है उसके साथ उसका जो अत्युच्च जो शुभ भाव भी वहाँ भले अबुद्धि पूर्वक में चलता हो तो वहाँ नया पुण्य बंध अत्यंत तो उत्कृष्ट अनुभाव के साथ बंध रहा है, पुराना भी टर्न होकर उस उत्कृष्ट रूप से उदय में आएगा। तो कहते विपत्ति के समय किया गया धर्म भी विपत्ति को दूर करता है, यानी विपत्ति को दूर करने के लिए केवल नमोकार मंत्र आदि जापने की या भगवान का स्मरण करने की बात नहीं है यहाँ पर, उस समय किया गया धर्म कहा है, केवल पुण्य नहीं कहा, यानी ये सच्चा धर्म हो और उसके साथ भक्ति के परिणाम भी हो तो उसकी बात है यहाँ पर। प्रकृत चर्चा का, प्रकृत यानी वर्तमान में जो चल रहे हाल में उपसंहार करते हुए अभी उसको समेटना चाहते हैं, श्रोताओं का, श्रोताओं को चाहिए ना, श्रोतृं प्रोत्साहित, श्रोताओं को धर्म की आराधना में उत्साहित करते को करो उसको। अभी ये नंबर 63 ऊपर है। तत्सेव्यताम अभ्युदयानुषंग फलोखिल क्लेश विनाश निष्ठ अनंत शर्मा मृतद सदार्य विचार्य सारो अनुभवस्य धर्म। यत है ने क्योंकि धर्म की महिमा स्थायी और अचिंत्य है, स्थायी ने हमेशा ही, अचिंत्य ने उसके अचिंत्य शक्ति कहते ना, ये आप उसके इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी अचिंत्य शक्ति, वो है ना एक अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। हाँ 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 कलश है। तो धर्म की महिमा स्थायी है और अचिंत्य है, अतः विचारशील पुरुषों को, विचार कर यानी विवेकी पुरुषों को, विचार करने वाले जो है बुद्धिमान है, बुद्धिमान केवल इंटेलिजेंट नहीं लेना, वो तो हमें क्या योग्य है क्या अयोग्य है, विवेकी जो उसको कहेंगे यहाँ, विवेक विचारशील कहा विवेकी कहेंगे, विचार कर प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाणों से। देखो ये प्रमाण भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो साक्षात हमें पता चलता है दिखाई देता है, देखे है हमने चीजें, अनुमान यानी हम 2 और 2 4 हाँ उसको अनुमान कर सकते हैं। अनुमान कैसे, जैसे दूर हमने पर्वत पर धुआं देखा, क्या अनुमान लगा सकते हैं वहां आग होनी चाहिए, नीचे आग कहीं जलाई है तभी तो धुआं दिख रहा है, जहां धुआं है वहां आग निश्चित है, उल्टा नहीं कह रहे कि जहां आग है वहां धुआं है, परंतु जहां धुआं है वहां आग होनी ही चाहिए हमने अनुमान से देखा, क्योंकि प्रत्यक्ष हमने पहले देखा है कि जब धुआं था तो नीचे अग्नि थी। तो ये प्रत्यक्ष अनुमान और आगम प्रमाण, आगम प्रमाण ने सूत्र में भगवान के द्वारा जो प्रतिपादन किया है ग्रंथ रूप उसकी जो रचना हुई है उसको आगम प्रमाण कहते हैं। क्यों प्रमाण कहते हैं, सर्वज्ञ की वाणी है ये, किसी आचार्यों की अपनी रचना, उन्होंने अपने शब्दों में भले गूंथा है उसको, परंतु जो तत्वों का स्वरूप जो है वो भगवान का कहा हुआ है, इसलिए उसको प्रमाण कहते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं, यानी उसके लिए शास्त्र में बहुत बार आती है बात कि इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो कहते आगम प्रमाण है, उसको दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। जैसे आपके मुंबई में सूर्य उगता है ना, कौन सी टॉर्च लेकर देखते हो वो होगा कि नहीं होगा, ये तो स्वयं प्रकाशित है, पूरे जग को प्रकाशित कर रहा है, उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरे और प्रकाश की जरूरत नहीं कि उसके प्रकाश में हम देखेंगे सूर्य आया कि नहीं आया, ऐसे ही भगवान की वाणी स्वयं प्रमाण है, उसके अन्य प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, हमारे वैज्ञानिकों ने प्रूव किया वही हम मानेंगे, ये आपकी वो बोल ऐसी लिखी हुई बातें हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो हमने सर्वज्ञ को नहीं माना, ये नित्य हो जाता है। तो कहते आगम प्रमाणों से निश्चित करके सदा धर्म की आराधना करनी चाहिए। धर्म की आराधना केवल भगवान की पूजा करते रहो चार पांच घंटे वो बात नहीं है, क्या क्या निश्चित करने को बोला, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान है, आगम प्रमाण है, यानी प्रमाण के द्वारा निश्चित करना, ये तो ज्ञान का कार्य है, यानी अच्छी तरह से जानकर ये सभी चीजें हम आगम से जानेंगे, उस पर विचार करेंगे, ऐसा ही है वो निश्चित करेंगे अपनी बुद्धि के द्वारा, तो कहते हैं ऐसा करके धर्म की आराधना करेंगे। हमें अपना ही स्वरूप निश्चित करना है और उसके लिए आगम कार्यकारी है, आगम का अभ्यास भी ये हम अपनी ओर जाने के लिए करेंगे, क्योंकि धर्म मनुष्य जन्म का सार है। अब तक तो हम अभी मनुष्य पर्याय में आए हैं, इस पंचम काल में जन्म लिया है, तो जन्म से कोई भी यहाँ समय दृष्टि नहीं है, ना स्त्री है ना पुरुष है, तो हम कब से तो अनादि से है, यानी हमने अभी तक अनंत 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 जन्म मरण कर दिए, तो ऐसा ये भी एक भाव उसमें और मिल जाएगा, तो आगे भी ऐसे अनंत करने हैं क्या? इसमें से छूटना है तो धर्म ही मनुष्य जन्म का सार है। अभी पहले जो कुछ भूल हो गई तो हो गई, परंतु अभी तो साक्षात इस पूरा मार्ग हमारे सामने खोल कर रखा है ज्ञानियों ने, अभी उसको सुनना है, समझना है, आत्मसात करना है, बस अपना कल्याण कर लेना, यही मनुष्य जन्म का सार है। हमने अपने जन्म को सार्थक करने के लिए क्या क्या किया, बचपन में स्कूल में गए, दसवीं पास किए, फिर कॉलेज में गए, फिर मेडिकल किया, और क्या क्या किया, फिर इतना सीखा है तो अभी कुछ कमाना भी चाहिए, कमाने में लगे, कमाने से क्या होता है, खर्चा भी करना चाहिए, उसको एंजॉय करेंगे तो ये लाइफ में कुछ मजा है ना, तो इसमें ही हमने मनुष्य जन्म का सार मान लिया। तो कहते क्योंकि धर्म, यदि धर्म प्रकट नहीं किया तो ये तो फालतू है, जैसे अभी तक अनंत जन्म पार किए तो हम ऐसे वो बेचारा निगोद में पड़ा है, वो बेचारा अपर्याप्त तो पड़ा है, पर ये बेचारा ऐसा पूरा मनुष्य भाव पाकर भी बेचारा ही रहेगा,
बनेंगे बेचारा बाद में।
हाँ ये बेचारा नहीं बनना है। तो धर्म मनुष्य जन्म का सार है, अत्यंत उपादेय होने से, थोड़ा कथनचित उपादेय, कथनचित ये थोड़े मजा ले लो, थोड़ा धर्म कर ही, अत्यंत उपादेय होने से उसका अंतर्भाग है, उसका आनुषंगिक फल अभ्युदय है, साइड प्रोडक्ट है ये, क्या ये जो पुण्य का उदय वगैरह जो हमने अभी जो अभ्युदय देखा, सांसारिक जो कोई उत्कर्ष कहो उन्नति कहो, ये तो उसका आनुषंगिक फल है, अर्थात धर्म करने से जो पुण्य होता है, इन धर्म के साथ साथ होता है, ऐसा कहीं धर्म तो अंतरंग में स्थिरता रूप धर्म है, वितरागता धर्म है, और उसके साथ पुण्य भी सहज रूप से, क्योंकि अभी पूर्ण वितराग तो हुआ नहीं है, जब तक अभी चौथा अनुसान है, पांचवा है, छठा, सातवा है, फिर भी साथ साथ पुण्य भी बन रहा है वहां पर, और उसको उपचार से धर्म कहा जा रहा है, वो तो आएंगे, जैसे यहां से हमको निकलकर पुणे जाना है तो बीच वाले सारे स्टेशन आएंगे, वैसे ही यहाँ ये सारा पुण्य का बंध भी होगा बीच में। तो कहते कि ये उसका आनुषंगिक फल अभ्युदय, अर्थात धर्म करने से जो पुण्य होता है उससे सांसारिक अभ्युदय की प्राप्ति होती है, अतः यह गौण फल है, बाय प्रोडक्ट। इसमें अगर हम अटके भटके तो ये तो धर्म जिन्होंने प्राप्त किया वो भी मिथ्यात्व में गिर जाएंगे, ये सहज रूप से उनके तो ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए कोई करना चाहता है तो वहां तो मिथ्यात्व पड़ा है, वह धर्म सर्व सब प्रकार के क्लेशों को नष्ट करने में सदा तत्पर है और अनंत सुख स्वरूप मोक्ष को देने के साथ लंबे समय तक सांसारिक सुख भी देता है। लंबा समय क्यों कहा, क्योंकि दो चार पांच दस भाव भी हो सकता है, समय कभी नहीं गिरा तो भी, तो एक वो मनुष्य का एक देव का, एक मनुष्य का एक देव का चलता रहेगा उसका, और मुनि अवस्था भी प्राप्त करेगा, फिर देव में जाएगा तो वहां कितना कितना ऊपर के देव में तो और वैभव ज्यादा मिलता रहेगा, तो कितने सांसारिक अभ्युदय सांसारिक सुख भी देता है। विशेषार्थ धर्म सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत देवत्व रूप यानी सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में उत्पन्न होता है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि जो तृप्ति सागर वाला वो जो वहां की आयु कौन बांधता है, छठे गुण स्थान वर्ती वहां बांधना शुरू हो, छठे सातवें में बनती है, इतनी उत्कृष्ट है, कोई चौथे पांचवे वाला भी नहीं बांधेगा। तो कहते सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत देवत्व रूप, तीर्थंकरत्व पर्यंत मानुषत्व रूप फल देता है, यानी मनुष्य होकर तीर्थंकर बनने जैसा भी फल देता है। धर्म यानी वो जो सम्यक दर्शन रूप धर्म है, वो उसके साथ बंधने वाला पुण्य, इसका समर्थन पहले कराए हैं, वह धर्म का आनुषंगिक फल है, यानी धर्म के साथ साथ बंधने वाले पुण्य का ये फल है, इसलिए उसको धर्म का आनुषंगिक फल दिया। उसका मुख्य फल क्या है, मोक्ष की प्राप्ति और अनंत सुख की प्राप्ति, अर्थात धर्म करने से सांसारिक सुख का लाभ तो उसी प्रकार होता है जैसे गेहूं की खेती करने से भूसे का लाभ अनायास होता है, किंतु कोई बुद्धिमान भूसे के लिए खेती नहीं करता, भूसा तो प्राप्त होता है और भी कितने वो बातें बनती है, यानी उससे भी कुछ न कुछ आमदनी हो जाती है उसको, ये बातें। आगे यहाँ से 22 पद्यों के द्वारा मनुष्य भव की निस्सारता का विचार करते हैं, उसमें सबसे प्रथम शरीर ग्रहण करने के दुख को कहते हैं निस्सारता। अभी तो हमें तो कभी निस्सार लगा ही नहीं, पूरा ही सार लगा है। आप कहते हो तो सुनेंगे, ऐसा कहते हैं, क्या करें, अभी हम चार से सुनने बैठे हैं। हम गए थे ना पहली बार, वो 2004 में फिनिक्स में गए थे, तो वहाँ संसार में दुख ही दुख ऐसी चलती थी बात। एक जन सभा में, बड़ी सभा में खड़ा हो गया, और तो वो कौन सा, वो कैटरीना कौन सा वो तूफान आया था वहाँ, वो पूरा गांव बह गया था, न्यू ऑरलियंस या वो कुछ, वहाँ जाके उपदेश दे ना, वो दुखी लोग है, हम तो सुखी है, जब चाहे तब खा सकते है, जो चाहे वो भोग सकते हैं, हम कहाँ दुखी है, आप आके हमको दुखी है कह रहे हो। वो वहाँ दुखी, उनको जाके उपदेश करो, ऐसा कहता था। तो यहाँ अभी हम देखेंगे मनुष्य भोग की सारता है कि निस्सारता है, उसके लिए ऊपर हम पढ़ेंगे 64 नंबर, वही पढ़ना है ना,
दोनों पक्ष दिखाए, आगे सार रूप भी दिखाया ना, ये कि
धर्म मनुष्य जन्म का सार है, पर मनुष्य जन्म सार नहीं कहा। क्योंकि मनुष्य भव या मनुष्य गति मनुष्यायु तो निगोद भी बांध रहे, और हम मनुष्य होकर भी आगे के मनुष्य पर्याय की सोचते हैं, ये हमारे दुख की बात है। लोग ऐसा दावा करते हैं, देखो ये मनुष्य भव मिला, पुण्य के उदय में मिला कि नहीं मिला, तो आप पुण्य का निषेध क्यों करते हैं, हम अभी भी पुण्य करेंगे और मनुष्य भोग मिलेगा हमको, यानी वो भोग ही धारण करना चाहता है, अच्छे अच्छे भोग ही धारण करना चाहता है। जो मिल गया है उसका सार किस में है, धर्म प्राप्ति में, वो तो देखता नहीं है, केवल पुण्य के उदय में मनुष्य भोग मिला, बस इतना ही वो मिला, तो उससे तुझे क्या मिला। यदि उसका हम उपयोग करके धर्म का स्वरूप समझकर धर्म प्रकट करे तो मनुष्य भव सार्थक हुआ, नहीं तो नहीं के बराबर है वो। अभी हम यहाँ पढ़ेंगे क्या कहना चाहते हैं। प्राग मृत्यु क्लेशितात्मा द्रुतगति रुदरावस्करे नाय नार्या संचार्यार्हम शुक्रार्तवम अशुचितरम तन्निगीर्णान्न पानम ग्रध्याश्नन शत्रुशार्तः प्रतिभय भवनाद्वित्रसन पिंडितो न दोषाद्यात्मा निशार्तम चिरमिह विधिना ग्राह्यते इंकं वराकः। वराकः मुझे विचार, इतना ही समझ में वरा कहने बेचारा, अभी क्या बेचारा है वो बता देखेंगे। नया शरीर ग्रहण करने से पहले यह आत्मा पूर्व जन्म के मरण का कष्ट उठाता है। कहीं से मर कर फिर आया ना, फिर नया शरीर धारण किया उसने, यानी वहां मरण का दुख उठाया उसने। पुनः नया शरीर धारण करने के लिए शीघ्र गति से एक या दो या तीन समय में ही अपने जन्म स्थान में पहुंचता है। कितने शीघ्र गति से जाना पड़ता होगा उसको। तो सात राज्यों के कहीं चौदह राज्यों कहीं जहां जो कोई जन्म लेना है, या एक समय दो समय या तीन समय, एक समय में ही पहुंचने वाला है जो उसको कहेंगे रुजु गति से जाता है सीधा, यानी यहाँ मरण हुआ और सीधा यहाँ आया या इधर या इधर, जो कोई पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर नीचे या ऊपर उसी आकाश के श्रेणी में यानी पंक्ति में अगर उसका जन्म होना है तो एक समय में पहुंच जाता है। वो कितना भी डिस्टेंस क्यों नहीं होगा, साइड वाइज ने पूर्व या पश्चिम या दक्षिण या उत्तर या ऊपर या नीचे, ये छह दिशाओं में, ऐसा नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा नहीं जाएगा, जिसको कहेंगे विदिशाओं में गमन नहीं होगा। अभी शरीर धारण करने वाली अवस्था में तो हम तो चाहे जैसा उल्टा सुल्टा गोल कैसे भी चक्कर खा सकते हैं। मृत्यु के बाद विग्रह गति में दूसरा भव धारण करने के लिए इन छह दिशाओं में गमन होता है। ऐसा भी नहीं कि पहले ऊपर जाता है और बाद में नीचे आता है, वहां वो ऊर्ध्वगमन वाला वहां नहीं लगाना है, ऐसी प्रेरणा चलती बहुत जगह, वो बराबर नहीं है, छह दिशाओं में गमन करता है। तो कोई तो एक समय में पहुंचता है बिना मोड़ वाला, उसको कहेंगे रुजु गति या इशु गति। एक मोड़, मोड़ यानी टर्न 90 डिग्रीज में, कोई मान लेता है इस कोने में है जीव और इस कोने में, ऊपर के कोने में, नीचे के कोने में, ऊपर के कोने में जन्म लेना, तो कैसे गमन होगा उसका। तो ऐसा गया, एक टर्न लेके 90 डिग्री यहाँ पहुंचा, दूसरा टर्न लेके यहाँ पहुंचा। यदि लोकाकाश क्यूबिकल होता, या ऐसे भी जा सकते, ऐसे ऊपर गया एक मोड़ लेके यहाँ गया, दूसरे मोड़ में यहाँ पहुंचा। लोकाकाश क्यूबिकल होता तो दो मोड़ से ज्यादा उसको नहीं लगते, दो मोड़ में पहुंच जाता, परंतु
आपने नीचे से पकड़ा, एक ऊपर वर्टिकल गया,
नहीं अभी
यहाँ गया, हाँ पहले ऊपर से दिखाया तो बराबर है, एक दफा
मैंने ये ऐसा बताया सीधा गया था,
हाँ सीधा गया,
फिर ये सीधा गया,
फिर ऊपर गया, ऐसा दिखाया,
ये एक मोड़ लिया और ये दूसरा मोड़ लिया,
नहीं दो, ये तीन मोड़ हो गया, ये एक 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 एक
एक मोड़ कहाँ लिया, यहाँ लिया,
स्ट्रेट लाइन,
उसके दंड तीन हुए, मोड़ दो ही हुए, और मोड़ के पहले जितने होते हैं उतने समय एक एक्स्ट्रा
है, कोई भी मोड़ नहीं,
नो मोड़,
हाँ, अभी अभी आप खाली एक मोड़ की बात,
अकेले एक मोड़ है तो हाँ। इसको इधर जन्मना है ऊपर, हाँ। तो यहाँ गया और एक मोड़ लेके यहाँ पहुंचा, समझ रही बात, यानी क्यूबिकल कोई भी होती स्ट्रक्चर तो हाँ। दो मोड़ से ज्यादा, यानी अभी हम इस रूम की बात करें, कोई भी एक पॉइंट ले लो, अभी मान लेते इसी इस टेबल के ये कोने में कोई मरा और उसको उस कोने में जन्म लेना, तो कैसे जाएगा, ऐसा सीधा गया एक मोड़ लेके उधर गया और दूसरा मोड़ के लेके ऊपर गया, जितने मोड़ उससे एक समय ज्यादा, तीन समय में पहुंच गया, क्योंकि उसके तीन दंड हुए ना, मोड़ दो हो गए, तो या तो बिना मोड़ के जाएगा या एक मोड़ से जाएगा, हाँ पानी मुक्त, दो मोड़ वाला लांगली का और तीन मोड़ वाला गोमुखरी का। तो मैं ये कह रही थी ऐसे क्यूबिकल अगर होता लोकाकाश तो दो मोड़ में कहीं पर भी पहुंच सकता था, उसको तीन मोड़ की आवश्यकता ही नहीं थी, परंतु लोकाकाश हम देखते हैं वो पूर्व पश्चिम अनइवन है और ये ऐसा लंबा पहुंच सात राज्य सर्वत्र फैला हुआ थ्री डायमेंशन, अब यहाँ का कोई जीव है मरकर उसको यहाँ जाना है, वो भी पीछे वाले अंदर के लेवल में, तो रुजु गति से जा सकेगा कि नहीं? क्यों नहीं?
लोकाकाश नहीं है ना,
लोकाकाश के बाहर तो नहीं जा सकता जीव कोई, तो उसको क्या करने पहले अंदर आया, एक राजु एरिया है ना, तो बीच में से ऊपर उसको जाना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया एक मोड़ लेके ऊपर गया और मोड़ लेकर एक यहाँ है, और पीछे दक्षिण उत्तर जाना होगा तो और एक मोड़ लेना पड़ेगा उसको, तो ऐसे एक इंद्रियों में ही, वो भी सूक्ष्म एक इंद्रियों में ही तीन मोड़ लग सकते एक इंद्रिय भी मरकर पंचेंद्रिय में आएंगे तो दो ही मोड़ लगते हैं, क्योंकि तृष्णारी में तो आना है, एक इंद्रिय से एक इंद्रिय में जाने वाले को ही तीन मोड़ लगते हैं, और वो भी विशिष्ट वो सूक्ष्म की वगैरह बात है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। कोई एक मोड़ लेता है, कोई बिना मोड़ का, कोई एक मोड़ का, कोई दो मोड़ का, कोई तीन मोड़ का, तो यहाँ तो एक दो या तीन समय में चार समय लगेंगे। अभी यह मनुष्य में आया है ना, अभी इसलिए तीन समय तक ले लिया होगा शायद, उन्होंने दो मोड़ से तो आएगा, कोई भी कहीं से भी आने दो, पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय में आने दो या एक इंद्रियों में से आने दो पंचेंद्रियों में, दो मोड़ मैक्सिमम यानी तीन समय लग सकते हैं उसे। तो देखो, नया शरीर धारण करने के लिए शीघ्र गति से एक या दो या तीन समय में ही अपने जन्म स्थान में पहुंचता है। उस समय पदार्थों के जानने के लिए प्रयत्न रूप उपयोग भी उसका नष्ट हो जाता है। ये इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा है अरविंद भाई, अश्विन भाई, आपका हमेशा प्रश्न है, उस दिन चर्चा हुई थी ना, क्योंकि विग्रह गति में उपयोग नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता, ऐसा नहीं कहा, उपयोग नहीं रहता। आपने पूछा था क्या? ऐसे दोनों ही प्रकार से उसके कथन आते हैं, साकार भी लेते हैं, क्योंकि हम कार्बन का योग में भी लिए थे साकार उपयोग विशुद्धि वाले के लिए। वहाँ तत्काल ही वह माता के उदर रूपी शौचालय में प्रवेश करके, देखो कितने ही देव जब विचार करते हैं कि वहाँ भी ये तो मनुष्य तीरंच में जन्म लेना है, औदारिक शरीर वाले हैं, और वो पेट में नौ नौ मास तक वो मांस की और रक्त यानी जहाँ खून है मांस है हड्डियां है वहां रहना पड़ेगा, उस विचार से वो संकुचित हो जाते हैं। यहाँ लिखा है ना, माता के उदय रूपी शौचालय में प्रवेश करके अति अपवित्र रजवीर्य को ग्रहण करता, यानी जिसको कहते स्त्री बीज और पुरुष बीज, उनके संयोग से यहाँ तो शरीर के जो कुछ सेल्स वगैरह उसकी रचना चालू होती है, तो कहते उसको ग्रहण करता है, और भूख प्यास से पीड़ित होकर माता के द्वारा खाए गए अन्न पान को लिप्सा पूर्वक खाता है। ये तो कथन करने की पद्धति, वो तो कुछ खाता पीता नहीं है, वो माँ के खून से उसका जो खून उसके शरीर में दौड़ता है। ऊंचे नीचे प्रदेशों पर माता के चलने पर भय से व्याकुल होकर सिकुड़ जाता है, ये तो सच्चा है, भय से व्याकुल होकर सिकुड़ जाना, क्योंकि वो भी अंदर अभी संगी पंचेंद्रिय जीव है, पर्याप्त जीव है, पर्याप्ति तो एक अंदर मुहूर्त में पूरी होती, उसको पूरा ज्ञान हो रहा है वहां पर, क्योंकि ये तो फिल्म आपने देखी होगी, वो किराए वाली कि नहीं देखी, सुना तो होगा ना, ये जब एबॉर्शन आदि करते हैं ना तो अंदर फोर्सेप्स डालते हैं, तो उन्होंने उसकी कलर फिल्म उतारी है, तो वो बच्चा वहां से सिकुड़ लेता है, बता ना अंग सिकुड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाता है, उसके ऐसे क्रंदन करने वाले आक्रोश से आ करके जो चिल्लाना है रोना है, वैसे पूरे वो फिल्म में बताए, कलर फिल्म बनाई अमेरिका में बनी है किराए नाम की, यानी वो बच्चे को भी पता है कि ये यहाँ अपने को डेंजर है, गर्भपात करते समय ये तो पूरा संगी पंचेंद्रिय उसका पर्याप्त जीव है, उसको भले वो अभी जिसको हम जन्म कहते हैं अभी माँ के गर्भ में है, परंतु वहां पर भी उसका जानना सब चल रहा है।
अगर माँ हॉरर फिल्म देखे तो उस पर उसका कोई प्रभाव?
बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो गर्भ के काल में भी बताते हैं ना कि आगम का अभ्यास ये हो, ये जो कहते हैं जरूर प्रभाव पड़ता है। तो ऊंचे नीचे प्रदेशों पर माता के चलने पर भय से व्याकुल होकर सिकुड़ जाता है, रात दिन दुखी रहता है। इस प्रकार बेचारा जीव पूर्व कर्म के उदय से वात पित्त कफ रस रुधिर मांस मेद हड्डी मज्जा वीर्य मलमूत्र आदि से बने हुए शरीर को 9-10 मास में ग्रहण करता है, यानी उसके जो कुछ जिसमें पूरी प्रक्रिया होती है 9 मास तक।
गुरुदेव
ये शास्त्र में बात आती है, 9 महीना तो गर्भकाल है
सामान्य
उन कहीं 12 वर्ष और 24 वर्ष का भी गर्भकाल कहने में आता है, जिसको अपवादात्मक ऐसा, तो ये शास्त्र का वचन है। गुरुदेव भली कहते हैं तो हमने भी शास्त्र में पढ़ा है वो, किन्तु कहाँ कैसे क्या वो पता नहीं है। एक्सेप्शनल होगी भी, पर अभी क्या होता है हम यहाँ पर भी देखते हैं, कोई 3-4 महीने का गर्भ हुआ है और डॉक्टर बोलते हैं ये बढ़ नहीं रहा है मर भी नहीं गया है, परंतु फिर भी उसको निकाल देते हैं, रखते नहीं है, तो पता नहीं ऐसा ही कितने साल तक रहता होगा, हमें तो पता नहीं है। और रेयर केसेस के कहाँ अभी मालूम आ रहा है, और केवल यहाँ की बात नहीं है। पर आगम में बात आई है 12 साल की और 24 साल की, मैं दूसरी बात अभी आज के साइंस से मैं बताऊंगी। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबीज की बात है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कर, यानी पुरुष का वीर्य और माता का वो बीज वहां उसका संयोग हुआ, अब वो ऐसे फर्टिलाइज्ड एग किस चीज को कहेंगे, वो फ्रीज कर देते हैं, अब उसको निकालो अब 24 साल के बाद और माता के पेट में डालो, वो वहां से बढ़ना शुरू होगा, तो क्या हुआ? हुआ ना। और ये भी ऐसा जो उसमें अभी इतने फर्टिलाइज एग तैयार किए, अभी जो टेस्ट ब्यूबीज भी होती है जिसको गर्भधारण भी कराते हैं, ऐसे 8-8, 10-10, 15-15 हो जाते हैं, मान लेते 8 बने, तो उसमें से एक जो कहे सक्सेसफुल होता है, बाकी तो सारे पर्याप्त मनुष्य है, उसको फेंक दिया जाता है। हमें लगता है कि साइंस ने तरक्की कर दी, हिंसा हो जाती है। अभी ऐसे ही तो चल रहे हैं ना उसमें, अभी ऐसे उन पर और कुछ प्रयोग करके उसमें से दवाइयां बन रही है। क्या करें, चल हम यही रुकेंगे, विशेषार्थ कल पड़ेंगे। बिना मोड़ वाला इशु गति, एक मोड़ वाला पानी मुक्ता, 2 मोड़ वाला लांगलिका गति कहते हैं उसको, और 3 मोड़ वाली गति उसको गोमूत्रिका कहते हैं।
के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तकनम सदा देत हो।